हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और टॉपिक देख के आप समझ ही गए होंगे कि क्या LIC की लिस्टिंग जो हो रही है ये देश के लिए नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है, या कैपिटल मार्केट्स के लिए कैसा इंपैक्ट रहेगा। तो काफ़ी मेरे जान पहचान में जो लोग हैं उनको लगता है कि काफ़ी नेगेटिव लिस्टिंग है ये, और इस कंपनी को क्यों बेचा जा रहा है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये है वो है। तो मैं मतलब इसलिए आपको एक क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ कि लिस्टिंग क्यों हो रही है। तो पास्ट में भी आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज गवर्नमेंट ने लिस्ट करी हैं। इवन रिसेंटली आप देखोगे IRCTC की लिस्टिंग हुई है, जिसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ही खुश हैं, उन्होंने काफ़ी पैसा बनाया और शेयर अभी भी बढ़ ही रहा है। और आप ऐसी देखोगे तो कोल इंडिया लिस्ट हुई है पहले, जो कि एक मोनोपोली बिजनेस होता था। SBI लिस्ट हुआ है, जो कि आपका सबसे बड़ा बैंक है देश का। तो काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉफिटेबल और बड़ी कंपनीज इंडियन गवर्नमेंट ने लिस्ट कराई हैं, और वो सब इसलिए लिस्ट कराते हैं क्योंकि हर गवर्नमेंट का अपना डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट होता है। तो LIC की लिस्टिंग होना मुझे समझ नहीं आ रहा इतना क्यों बड़ी बात बन गई है कि LIC को लिस्ट मत कराओ। उल्टा लिस्ट कराने से होता क्या है कि आपकी बुक्स की स्क्रूटनी होती है सबसे पहले, क्योंकि जब आप कैपिटल मार्केट्स में जाते हो तो आपको बुक्स ढंग से देखनी पड़ती हैं। आप एक वैल्यू निकालते हो कंपनी की, एक फेयर वैल्यू जब कंपनी की आती है उसके बाद आपको पता चलता है यार हाँ कि अच्छा इस बिजनेस की मेरे इतनी वर्थ है। तो उसके वजह से अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, और एक बार लिस्टिंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर्स और काफ़ी लोग उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। एक प्राइस डिस्कवरी हो पाएगी वहाँ पे कि LIC की एक्चुअल वर्थ कितनी है। तो जब ये सारा हो जाएगा, इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, तो मुझे तो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव लगता है कि इसकी लिस्टिंग आ रही है अब। और इतने सारे पॉजिटिव चीज़ें दिखते हैं क्योंकि आप देखोगे कैपिटल मार्केट्स के अंदर सबसे बड़ा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो आपका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो LIC है, और LIC की काफ़ी होल्डिंग्स है काफ़ी कंपनीज़ में। तो अगर LIC की लिस्टिंग होती है तो ये बहुत बड़ा प्लस रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट का एक तरीके से आप कह लो सबसे बड़ा डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट मार्केट में अब लिस्टेड होगा। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, उसकी बिजनेस की फंक्शनिंग समझ आएगी आपको। LIC एक एकलौती ऐसी कंपनी है जिसकी इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर सॉवरेन, मतलब सॉवरेन बैक्ड है। इसके अंदर अगर आपने इंश्योरेंस कराई है तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पैसा देने से डिफॉल्ट कर जाएगी कंपनी या कुछ है। तो बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी बड़ी कंपनी की लिस्टिंग हो रही है कैपिटल मार्केट्स में। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इतनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को लिस्ट क्यों करा रहे हैं। तो भैया, लॉस मेकिंग कंपनी में कौन पैसा डालेगा, सबसे सिंपल सी बात है ये। तो मतलब बहुत ही फनी चीज़ मैंने सुनी है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को क्यों लिस्ट कराया जा रहा है। जब SBI लिस्ट हुई थी, जब कोल इंडिया लिस्ट हुई थी, और कितनी ही पब्लिक सेक्टर कंपनीज लिस्ट हुई है, सब अच्छे से प्रॉफिट मेकिंग थी। एयर इंडिया को लिस्ट कराओगे तो उसके तो कोई पैसे देगा नहीं ना, जो 80,000 करोड़ के डेट में है कंपनी। तो ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को ही लिस्ट कराते हैं। और हर गवर्नमेंट का, अगेन मैं कह रहा हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट होता है। तो इसके अंदर कोई ये नहीं है कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ कर रही है, वो कुछ नहीं किया उसने, या उसने गलत लिस्टिंग कराई, इसने गलत लिस्टिंग कराई। आप देखोगे आज तक का जो इंडिया में सबसे बड़ा IPO आया था वो कोल इंडिया का था, 15,200 करोड़ उन्होंने जुटाए थे, वो 2010 में आया था। तो वो किसी और गवर्नमेंट के अंडर आया था। उस समय आपको ध्यान होगा फाइनेंशियल क्राइसिस से इंडिया भी निकल रहा था, ग्लोबली भी हम निकल रहे थे फाइनेंशियल क्राइसिस से। तो ऑब्वियसली उनको पैसों की ज़रूरत होगी, और कोल इंडिया इतनी बड़ी मोनोपोली थी, उस समय भी लोगों के दिमाग में आया होगा कि क्यों लिस्ट करा रहे हो। बट ये सारी बिल्कुल बेतुकी बातें हैं आपकी। अल्टीमेटली ये जो सारी कंपनीज हैं इनको प्राइवेटाइज होना जरूरी है। आप देखोगे लास्ट जो कंपनी आई थिंक जो प्राइवेटाइज हुई थी प्रॉपरली, दैट वाज हिंदुस्तान जिंक, और उसने कितनी रिटर्न्स बना के दिए शेयर होल्डर्स को, उसने कितना ही टैक्स पे किया होगा। अगर गवर्नमेंट ने उसको प्राइवेटाइज कराने के बाद भी लेट से कि 40% स्टेक भी उसके अंदर रख लें, तो भी उन्होंने खुद ही कितनी वेल्थ बना ली होगी। मुझे नहीं पता LIC का या गवर्नमेंट का कितना स्टेक है इस समय उसके अंदर, बट आप देखो उस तरीके से भी कि वेल्थ क्रिएशन कितनी ज़्यादा होती है इन कंपनीज में। तो गाइज, रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि एम्प्लॉई यूनियन स्ट्राइक पे जा रही है कि LIC को लिस्ट मत कराओ। अगेन मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है, एम्प्लॉयज़ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है लिस्टिंग का, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मे बी बुक्स की स्क्रूटनी होगी, कुछ काम बढ़ जाएगा कुछ टाइम के लिए, बट आप क्यों नहीं चाहते कि ट्रांसपेरेंसी आए सिस्टम में, आप क्यों नहीं चाहते कि वेल्थ जनरेटिंग बने ये कंपनीज। इवन एम्प्लॉयज़ को आई एम श्योर कुछ ना कुछ को तो शेयर्स मिलते होंगे कंपनीज के। एंड LIC की इतनी बड़ी सब्सिडरी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिस्टेड है मार्केट में, तो इस कंपनी को लेकर इतने क्यों मतलब शोर मचाया जा रहा है, आई कांट अंडरस्टैंड दैट। अगर लोग कहें कि एयर इंडिया जैसे ऊपर लिस्ट कराना चाहिए तो उनको तो कोई पैसा देगा नहीं, तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो आपकी ढंग से वेल रन है उन्हीं को मोनेटाइज कर सकती है गवर्नमेंट। और एक चीज़ और, ये कंपनीज तभी लिस्ट होंगी जब एक्चुअली गवर्नमेंट स्ट्रेस में होगी। ये कभी भी उस समय लिस्ट नहीं होगी जब सब हंकी डोरी चल रहा होगा, सब अच्छा चल रहा है भाई, अपनी GDP की ग्रोथ आ रही है, ग्लोबल टेलविंड्स है आपके पास, इन्फ्लेशन आपकी ठीक चल रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, उस समय कंपनीज लिस्ट नहीं होंगी। ये कंपनीज लिस्ट ही तब होती है जब एक्चुअली गवर्नमेंट स्ट्रेस में होती है। अगर आप देखोगे तो 2007 में क्यों नहीं कोल इंडिया को लिस्ट कराया जब फाइनेंशियल मार्केट्स अपने पीक पे थी, 2010 में क्यों आया कोल इंडिया का IPO। तो अगेन ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं कि ये पहले क्यों नहीं लिस्ट कराई, इस समय प्राइस डिस्कवरी अच्छी नहीं होगी। प्राइस डिस्कवरी और वो मार्केट की वैल्यूएशन को लेके मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, रिसेंटली अरामको लिस्ट हुई है, आपकी सऊदी अरामको जो कंपनी है वहाँ पे, तो वो इतनी अच्छी वैल्यूएशन पे लिस्ट हुई है, इतनी रिच वैल्यूएशन पे लिस्ट हुई है कि आप यकीन नहीं कर सकते। और ये ऐसा क्यों है, आपने देखा होगा कि सेंसेक्स निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, ज़रूर इकोनॉमी की हालत बुरी है बट कैपिटल मार्केट्स ठीक चल रही हैं, जब से कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट आए हैं तब से मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ी खरीदारी हमें दिखी है, उस लेवल पे नहीं आया ऑब्वियसली बट थोड़ी इसके अंदर गिरावट आप कहोगे कि वो रुक गई है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लोबल लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है इस समय सिस्टम में, और सिस्टम में इतनी लिक्विडिटी है तो ऑब्वियसली आपको जो वैल्यूएशंस मिल रही है, आप देखो फैंग स्टॉक्स हो चाहे वो, चाहे इंडिया के अंदर जो बड़ी कंपनीज हो, एशियन पेंट्स हो, HDFC बैंक हो, इन टाइप की कंपनीज हो, इन सबको वैल्यूएशन बहुत अच्छी मिल रही है क्योंकि पैसा ग्रोथ को चेस कर रहा है। आप देखो बजाज फाइनेंस 4500 रुपीज़ पे शेयर पहुंच गया है, स्प्लिट और बोनस अगर आप एडजस्ट करो उसका तो एग्जैक्टली उसका 45,000 रुपीज़ का एक शेयर है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी हो गई हैं कंपनीज और इनको पैसा चेस कर रहा है और ये ग्रोथ डिलीवर कर रही हैं। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि LIC की वैल्यूएशन खराब निकलेगी। आई एम प्रीटी श्योर गवर्नमेंट बहुत सीरियस है इसको लिस्ट कराने के मामले में, तो वैल्यूएशन मुझे लग रहा है थोड़ी उल्टा हो सकता है, महंगी ही आए। और वो क्यों भी आएंगी, ये 75% आपका लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट शेयर है इसके पास। तो मुझे LIC की लिस्टिंग में कोई भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है। ये जरूर है कि LIC की लिस्टिंग वुड हैव बीन वन ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट टू मीट देयर डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट एंड फिस्कल टारगेट, और वो ऑब्वियस था, इस समय नहीं आती तो कब आती। तो मेरे को लगता है धीरे धीरे आपको कंपनीज प्राइवेटाइज करनी चाहिए। एयर इंडिया BPCL की बात चल रही है, दिक्कत क्या है उसके अंदर, इन्होंने कहा कि स्टाफ का कटडाउन हम नहीं करने देंगे किसी को, अगर आप स्टाफ कटडाउन करने नहीं दोगे कोई भी इन कंपनीज को नहीं खरीदेगा, कोई भी ओवर स्टाफिंग बर्दाश्त नहीं करता कंपनीज में। ओयो को जैसे ही आया कि नहीं अब पैसा कमाना है, उन्होंने अपना खुद का स्टाफ वो कर दिया, आधा कर दिया लिटरली कुछ कुछ ऑफिसेज में, प्रॉपर्टीज़ उन्होंने काफ़ी वेकेट कर दी गुड़गांव जैसे सिटी में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कैपिटलिज्म को बढ़ने दें, बिजनेसेस को बिजनेसेस की तरह चलने दें, उनमें ज़बरदस्ती सोशलिज्म का एंगल ना घसीटें। 2% या जो भी आपका CSR का होता है सारे बिजनेसेस करते हैं, बहुत बिजनेसेस उससे ज़्यादा भी करते हैं, टाटा साहब देखो जहाँ भी जाते हैं शहर ही बसा देते हैं। तो जो भी बिजनेस पीपल हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप अपने चेक्स ज़रूर रखिए वहाँ पे कि कुछ गलत नहीं हो रहा, बट अगर कुछ गलत नहीं हो रहा उनको ज़बरदस्ती मत घसीटिए कि आप ये भी करो वो भी करो, लेट देम मैनेज देयर ओन बिजनेसेस, माई बिजनेस इज माई बिजनेस नन ऑफ योर बिजनेस, जो रेस्त्री का एक डायलॉग है वही याद आता है। तो कंपनीज को अपना बिजनेस चलाने दीजिए और होपफुली वो धीरे धीरे करके इतनी वेल्थ क्रिएट करेंगी, इतने टैक्सेस पे करेंगी कि आपका जो सेट ऑफ है सारा, इधर का जो गेन वेन आपको लग रहा है वो मतलब सारा सेट ऑफ हो जाएगा और लॉन्गर रन में आप ही इवन मतलब गवर्नमेंट और हम सिटीजन्स ही बेनिफिशियल रहेंगे उसके, क्योंकि जो टैक्सेस पे करती हैं वो ऑब्वियसली सिटीजन्स के लिए यूज़ होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। तो गाइज मुझे तो लगता है LIC की लिस्टिंग एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, कैपिटल मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है और LIC के लिए खुद के लिए और इवन गवर्नमेंट के लिए इस समय, क्योंकि उनको ज़रूरत है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये सारी कंपनीज को प्राइवेटाइज हो ही जाना चाहिए ताकि इनके अंदर एफिशिएंसी बढ़े। आई एम प्रीटी श्योर अगर आज HDFC की मैनेजमेंट LIC को चला रही होती, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम LIC's मैनेजमेंट, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता कहीं ना कहीं, या जैसे क्या ये कि जो कुछ कुछ बायस वो करवाते हैं ताकि कंपनी कोई फेल ना हो, अगर वो सब ना होता आई एम प्रीटी श्योर इट वुड हैव बीन डबल द साइज ऑफ वॉट इट इज़ राइट नाउ। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन कंपनीज को बढ़ने दें, उनके टैक्सेस गवर्नमेंट ले और उससे हमारा मतलब बेसिकली सिटीजन्स के लिए बेटरमेंट के लिए वर्क करें, और ये कंपनीज इतनी वेल्थ क्रिएट करेंगी होपफुली आने वाले समय में। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स पे भरोसा करें, थोड़ा बढ़ावा दें इनको और ज़्यादा। और मेरे को तो यही लगता है कि इतना बड़ा पॉजिटिव स्टेप आया है फाइनली, मतलब 20 साल से लोग इसकी मांग कर रहे हैं, मैं काफ़ी लोगों से मिला जो बहुत पहले से कैपिटल मार्केट्स में, मेरे को तो 5 to 6 ईयर्स ही हुए हैं, बट वो कह रहे हैं कि हम कब से वेट कर रहे हैं कि LIC की लिस्टिंग हो, और LIC की लिस्टिंग सबको बहुत ही बड़ा पॉजिटिव स्टेप लग रहा है। तो गाइज होपफुली आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाए होंगे, अगर आपको कुछ लगता है कि आपका कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है तो बिल्कुल मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, होपफुली अगर मैं उसके अंदर कुछ ऐड कर सकूंगा तो करूंगा, और मे बी कोई पॉइंट ऑफ व्यू मैंने मिस कर दिया हो, बट मैंने वो सारे कवर कर लिए हैं कि पहला जो था कि वो प्राइवेटाइज क्यों हो रही है, क्यों नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ की जो स्ट्राइक्स हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं ज़बरदस्ती या उन पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ट्रांसपेरेंसी को लेके, कैपिटल मार्केट्स को लेके, और मैंने ये भी आपको बताया कि पास्ट में भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, आफ्टरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको ऑब्जेक्टिवली देखना बहुत ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पास्ट में भी थी, उस समय UPA की अलायंस जो होती थी, 2010 में कोल इंडिया वॉज द बिगेस्ट IPO दैट द मार्केट्स एवर सॉ, तो इसके अंदर इतनी परेशानी की बात की, और कोल इंडिया कौन सा तब पैसा कमा नहीं रही थी, आज पैसा कमा नहीं रही है, उस समय भी प्रॉफिटेबल थी बहुत। तो बहुत ज़रूरी है कि धीरे धीरे इनकी लिस्टिंग हो, ये प्राइवेटाइज हो, और प्राइवेटाइज होते ही आप देखोगे कि कितने शानदार तरीके से रन होती है। एक्सिस बैंक वगैरह आप देखोगे कितने अच्छे से, कितने बड़े बैंक्स बन गए हैं, सब पहले गवर्नमेंट के अंडर होते थे। तो SBI वगैरह, और अभी आपने PNB के नंबर देखे होंगे, PNB के नंबर देखने के बाद किसी को भी यही लगता है कि यार इनको प्राइवेटाइज करो, अच्छी मैनेजमेंट के पास जाए। आज आपके जो बैंक्स हैं उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर में करंट सिचुएशन में मैं बताऊं, अगर आपका एक थोड़ा यस बैंक है जिसका थोड़ा डाइसी हो रहा है मामला, यस बैंक को छोड़ दें तो सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफ़ी अच्छे से रन हो रहे हैं इस समय। बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जहाँ पे बात आती है, तो आप कोई सा भी उठा लें, SBI का रिसेंटली सबको लगा था कि ठीक है, बट NPA डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है, PNB की प्रोविजनिंग बहुत हाई आई है, और बाकी बैंक्स भी वेल्थ क्रिएट करके नहीं दे रहे हैं। तो आपको ऐसे बैंक्स चाहिए जो लॉसेस डिक्लेयर करते रहे, या जो कंपनी जो बिल्कुल ख़त्म होती चली जाए, या आपको ऐसी कंपनीज चाहिए जो कम से कम 25% आपको टैक्स तो पे करें। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो, और बहुत स्पीडली हो। मुझे ये लग रहा है कि प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है। अब तक आपकी BPCL और एयर इंडिया को फुल्ली बिक जाना चाहिए था। ये मेरे को एक पढ़ते हुए पता चला है कि 2010 से 14 के बीच में जब ये एयर इंडिया का सेल तय कर रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देवर ट्राइंग टू सेल इट ऑफ। तो उस समय UPA की गवर्नमेंट थी, देवर ऑल्सो ट्राइंग टू सेल दिस ऑफ, क्योंकि ये डेड एसेट हो गया था गवर्नमेंट के लिए, और ये लाइबिलिटी बनता जा रहा था, और बहुत ज़्यादा इसमें लोन है। तो CAG की आई थिंक उस समय रिपोर्ट आई थी कि ये नेशनल प्राइड का मामला है, इसलिए एयर इंडिया को मत बेचो। मतलब आज क्वीन ऑफ इंग्लैंड ट्रैवल्स इन अ रेंज रोवर, और रेंज रोवर इज ओन्ड बाय टाटाज विच इज़ एन इंडियन कंपनी। किसी को फर्क नहीं पड़ता है। अब कितनी नेशनल एयरलाइंस देख लो जो पहले उन कंट्री की होती थी, अब कोई और रन कर रहा है। तो ये सब ना बहुत ही मतलब फालतू की बातें होती हैं, ये सब वही अपना ब्यूरोक्रेसी और उसके अंदर उलझ के रह जाते हैं मामले। ये कंपनीज इंडियन पोस्टल सर्विसेज, दे आर मेकिंग 1 लाख करोड़ का उन पर डेट है, मतलब लॉस है बताओ, और वो अभी तक तक चल रही है। पता नहीं कितना ब्याज देते हैं अपनी सेविंग स्कीम पे, कोई भी नहीं देता इतना ब्याज पूरे देश में, पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में इतना ब्याज नहीं है जितना इंडियन पोस्टल सर्विसेज दे रही है। तो इंटरेस्ट रेट वगैरह वो कम नहीं करेंगे, तो 1 लाख करोड़ का टैक्स पेयर मनी यही चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे जिस दिन। तो आपने देखा होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम आया था इंडिया में, जो आपकी 2003 से 2007 तक की अराउंड की रैली जो थी, तो उसमें आपने खुद देखा होगा कि कितनी स्पीड से, मतलब जब इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ आती है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को कि हम क्यों इतने डेड एसेट्स और ये चला रहे हैं। और आई थिंक इसी गवर्नमेंट में दम है कि ये कर सके, इनके पास सेंटर में मेजोरिटी है, दे कैन डू दिस एंड दे शुड डू दिस। मैं ये नहीं कह रहा 4 साल बाद अगर आप कहोगे कि UPA की गवर्नमेंट आती है, आई एम प्रिटी श्योर दे विल अगेन फॉलो दिस मॉडल, क्योंकि इकोनॉमी चलाने का यही तरीका है। लोग अपनी लगाते रहते हैं कि BJP मुझे पसंद नहीं, कांग्रेस ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है इंडिया को चलाना, और चाहे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, चाहे आज मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट को अपने डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट, फिस्कल डेफिसिट सब कंट्रोल में करना ज़रूरी है। और फाइनेंशियल हेल्थ अगर हम इकोनॉमी की देखें, तो यस हम एक स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन के अंदर आ गए हैं, बट स्टैगफ्लेशन मुझे लगता नहीं ज़्यादा दिन चलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो हमारी ज़्यादा आ रही है वो अनियन और गार्लिक के प्राइसेस की वजह से आ रही है, जो कि बहुत टेम्परेरी होता है। ओवरऑल आप देखोगे, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा, तो 9% हमारा फूड की जो बेसिक कॉस्ट है वो कम हुई है ओवर द लास्ट पास्ट फ्यू ईयर्स, और ये यही दर्शाता है कि इन्फ्लेशन वगैरह इकोनॉमी में नहीं है, उस हिसाब से ग्रोथ नहीं आ रही है इकोनॉमी के अंदर। बट क्योंकि ये सब नहीं आ रहा, तो महंगाई भी नहीं बढ़ रही है, वही मैं कह रहा हूँ इन्फ्लेशन नहीं है उस हिसाब से, तो इन्फ्लेशन काफ़ी अंडर कंट्रोल है। स्टैगफ्लेशन से मुझे लगता है इकोनॉमी निकलेगी, बट ये अच्छा मौका है क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ काफ़ी बंधे हुए हैं कि ये सारे एसेट्स मोनेटाइज हो जाएं, और ये जब मोनेटाइज होंगे ये आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।